श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद दूसरा अध्याय 22वां श्लोक। नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवते कुर्वन्ति आत्म प्रसादिनी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो यहाँ पर इस श्लोक में कवयो मतलब जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो वो लोग किस में आनंद लेते हैं, किससे वो अपने आप आत्मतृप्त पाते हैं, इसके बारे में बताएं। जो भगवान के सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण के वासुदेव आत्म प्रसादनी, वो स्वयं आनंद में रह सकते हैं। ये अभी अभी जो अभी अभी शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत पहले से होता है ऐसा। नित्यम अथो वही कवयो नित्यम, नित्यम बहुत पहले से, पहले की बात नहीं, बात है ये अभी अभी शुरू नहीं हुआ है। कृष्ण की सेवा करना अभी अभी नया फैशन ऐसा नहीं है। अथो वही कवयो नित्यम, ये पहले से आता हुआ एक परंपरा है कि जो बुद्धिमान लोग हैं कवयो भक्तिम परमया मुदा, बहुत आनंद से भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। भक्तिम परमया मुदा आनंद से, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी, तो उससे क्या बोल क्या मिलता है। वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी, भगवान वासुदेव के सेवा करने से आत्म प्रसादनी। तो यहां एक दो तीन चीज हमें ध्यान देना है। एक तो है कवयो, आजकल हमारे जो बहुत बड़े और मशहूर माने जाते हैं, यशस्वी माने जाते हैं, वो लोग हैं सिनेमा के तारे और जो खेलकूद में जो प्रसिद्ध है वो, और राजकीय कार्यकलापों में जो प्रसिद्ध हैं उनको भी बड़े लोग माने जाते हैं, और सामान्य लोग वो बड़े लोगों का अनुसरण या अनुकरण करते रहते हैं। भगवद गीता में बताया कि जो सामान्य लोग हैं वो देश के जो प्रसिद्ध लोग हैं, क्या श्लोक है, श्लोक क्या है सबको मालूम है, भूल गया क्या श्लोक। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एव तरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते, लोकस्तत् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ, जो समाज के श्रेष्ठ माने जाते हैं तो लोग सामान्य उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। इसलिए ये कोई भी जगह का श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं उस पर आराधित है, आधारित है जन सामान्य उनका व्यवहार कैसा रहता है। जैसे कोई घर जाते हैं, वहाँ के बच्चे और वहाँ के जो सदस्य हैं उनके बर्ताव से, उनके व्यवहार से पता चलता है वहाँ का वो घर का जो मुख्य है वो कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, हमें परखने पड़ता है, हम समझ सकते हैं उसको। वैसे ये समाज में भगवान के सेवक के प्रति किसी को भी आसक्ति नहीं है, और जिस किसी को भी ऐसा आसक्ति है उनको प्रेरणा नहीं मिलता है समाज में, क्योंकि जो हमें श्रेष्ठ माना जाते हैं समाज के उनमें ये भावना नहीं है, भगवान के प्रति सेवा और समर्पण करने का ऐसा भाव नहीं है। लेकिन पुराने जमाने में जैसे परीक्षित महाराज के राज होता था तब पूरा ध्यान भगवान के सेवा के ऊपर केंद्रित था, इसी कारण सब लोग भी उनको विश्वास है नहीं है या ऐसा भावना है नहीं है, क्योंकि देश के अधिनेता भगवान के प्रति समर्पित हैं, इसलिए वो भी समर्पण करना पड़ता था। तो इसलिए जो यहाँ बताया गया है खवयो, मतलब यहाँ का अर्थ है जो दिव्य लक्षण जिसके पास है, दिव्य जो है मतलब तीन गुणों से जो ऊपर है, हम सभी तीन गुणों से प्रभावित हैं। तो भगवान तीन गुणों से ऊपर और उनके भक्त भी तीन गुणों के प्रभाव से, जो भक्त मतलब शुद्ध भक्त तीन गुणों से प्रभाव से ऊपर रहते हैं। तो ऐसे हमें आचार्य या गुरु मिल जाए हम परम सौभाग्य समझना चाहिए। तो हम सभी को श्रील प्रभुपाद मिल गए हैं जो तीन गुणों से परे हैं, और इनके शिष्यगण जिससे हम दीक्षा ले रहे हैं वो भी तीन गुणों से परे हैं। तो हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसा आचार्य हमें मिला है जो तीन गुणों से परे हैं और भगवान को समझ सकते हैं और भगवान के सेवा में हमें लगा सकते हैं और समझा भी सकते हैं। तो इस बात को हमें बार बार याद रखना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमारा परम सौभाग्य है। किस कारण? क्योंकि प्रभुपाद जैसे आचार्य हमें मिला है और उनके जो बताए गए हम उसका पालन करने में हमारा कोशिश जारी है, तो ये बहुत परम सौभाग्य है। तो दूसरा विषय यहाँ उल्लेख आता है कि भक्तिम परमया मुदा, तो भगवान का सेवा जो है भक्तिम परमया मुदा, हमें आनंद देना चाहिए। जब भी हम भक्ति करते हैं तो उसका क्या प्रभाव है, हमें मुधा, हमें प्रसन्न चित्त होना चाहिए। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योग। तो हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन मुंह ऐसा सूखा है तो मतलब भक्ति नहीं होगा। जो भी भक्ति करते हैं तो प्रसन्न चित्त रहना, आनंद में रहना। तो तो आनंद नहीं मिल रहा है और कोई बोलता है हम भक्ति कर रहे हैं, तो ये दोनों में एक चीज हो सकता है कि भक्ति में इतना शक्ति नहीं है, नहीं तो वो भक्ति कर ही नहीं रहा ठीक से। तो यहां बताया गया है भक्तिम परमया मुधा, जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमें आनंद से रहना, किसी का भी हमें कुछ चिंता नहीं रखना है। चिंता रहे तो भी, चिंता के कारण बहुत रहने पर भी आनंद से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ चिंता तो रहता ही है, भौतिक जगत है। ऐसा एक दिन नहीं आएगा जब बोल सकते हैं बस सब चिंता दूर हो गए हैं और हमें कुछ भी चिंता करने का जरूरत नहीं, ऐसा दिन नहीं कभी आएगा, क्योंकि ये जगत का निर्माण ही ऐसा है कि हमें चिंता से दूर नहीं हो पा सकते। लेकिन वो चिंता ऐसे रहते रहते हुए भी हमें प्रसन्न चित्त रह सकते हैं, प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। एक बात हमें समझना है कि ये जो चिंता है शरीर और जो जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होता है, ये जो हम चिंता करते हैं आत्मा से कभी नहीं आता। ये शरीर और सूक्ष्म शरीर, जड़ शरीर सूक्ष्म शरीर से ही सब कुछ चिंता का जन्म होता है, और हमें समझना चाहिए कि ये शरीर में हम नहीं है और ये सूक्ष्म शरीर दोनों शरीर हम नहीं है। तो जो आत्मा के प्रति लग्न रहते हैं, आत्मा के कार्य में रहते हैं, तो ये जड़ शरीर और सूक्ष्म शरीर से जो उत्पन्न चिंताएं और जो दुख है उनके ऊपर प्रभावित नहीं करते। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, उनके जो अंत्य लीला था जब उनका पूरा शरीर केवल चमड़ा और क्या बोलते हैं हड्डी बस, उसमें और मांस नहीं था, आप देखे होंगे कभी वीडियो में, और आयुर्वेद के जो वैद्य थे वो बताते थे कि ये परम दुखदायक बीमारी, सो नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, ऐसा बीमारी। लेकिन ये पूछा जा सकता है प्रभुपाद की क्यों आया, वो तो परम भक्त है और तीन गुणों से परे हैं। क्योंकि कभी कभी भगवान ऐसा स्थिति में रखते हैं दिखाने के लिए कि उनका भक्त कितना महान है। जैसे भीष्म देव थे, हमको एक सुई लग गया नहीं तो कोई कांटा अंदर चले गया, तो हर समय उसकी चिंता रहता है। लेकिन भीष्म देव के शरीर में एक सुई भी हम उसमें लगा नहीं सकते थे, इतना पास पास में ये बाण लग गए उनके पीछे, इतने पास पास में थे कि एक सुई भी उसमें लगा नहीं सकते थे अंदर, इतने पास पास में थे वो ये सब बाण। हम समझ सकते हैं कितना पीड़ा हो सकता था, कितना पीड़ा भुगत रहे हैं, लेकिन बिल्कुल उसके प्रति उनका चिंता नहीं था, वो आराम से थे भीष्मदेव। क्यों? क्योंकि वो सोते सोते बाण के शैया पे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी भी, उनका शरीर का बहुत पीड़ा था लेकिन वो भगवान के नाम गुण लीला में इतना लग्न थे कि उस शरीर का जो भी कष्ट था वो उनको ऐसा नहीं लग रहा था, तो प्रसन्न थे। कभी कभी वो हंसी मजाक भी करते थे उस पीड़ा अवस्था में भी। और सब लोग जो भी आते थे इनके शिष्य दूर दूर से उनको दर्शन देने के लेने के लिए, तो तुरंत वो रो पड़ते थे उनकी हालत देख। लेकिन श्रील प्रभुपाद कभी कभी ऐसा हंसी मजाक कर देते थे, कोई जोक बोल देते थे, तो वो लोग हंसना या रोना पर समझ में ना, प्रभुपाद ऐसे स्थिति में और ऐसा बोल रहे हैं। प्रभुपाद ऐसी स्थिति में है, उनके मुंह में रोज एक चम्मच से वो थोड़ा छांस लेते थे बस। ऐसे अवस्था में एक भक्त आया, उनको कभी बहुत महीने पहले चोट लगा, सो प्रभुपाद उस स्थिति में वो फिर आने के बाद बोलो आपका चोट कैसा है, आप प्रसाद लिए क्या, अरे इनका परिस्थिति क्या है, मेरे छोटा सा चोट से वो याद है उनको और उसके बारे में पूछ रहे। तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि जब ऐसा नहीं कि वो नाटक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा ऐसा स्थिति है कि हम जब भक्ति करते हैं तो ये सब जो चीज़ है हमको इतना पीड़ा नहीं देता। तो इसलिए मैं बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं कि कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि जब भक्ति करते हैं तो हमें कष्ट नहीं आएगा, ऐसा कभी नहीं है। भागवतम में ऐसा कहीं स्थिति नहीं है कि बस भक्ति कर लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है भौतिकता से, नहीं, कभी भी कुछ भी समस्या आ ही पड़ता है। ध्रुव महाराज इतना बड़ा ग्रह का, ध्रुव ग्रह का वो अधिपति हो गया, फिर भी इनका चिंता हो गया क्योंकि उनके छोटे भाई को मारे गए, तो उनसे जो मारे हैं उनसे युद्ध करने लगे, उनको मारने लगे, ये चिंता के कारण ही है ना। तो ऐसा भगवान का दर्शन होने के बाद भी जब भी ये जगत में रहते हैं तो चिंता पीड़ा तो आता ही, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं होते, यही बात। तो हम ये मान के चलना है कि हम भक्ति कर रहे हैं कि हमें कभी भी पीड़ा नहीं होगा, दुख नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं समझना चाहिए। तो ये समझना चाहिए कि हमको इतना शक्ति होगा, शक्ति मिलेगा भक्ति से कि वो पीड़ा का प्रभाव हम के ऊपर नहीं पड़ता है। हालांकि शरीर में ऐसा दिखता है कि प्रभाव हो रहा है, लेकिन हम यहाँ जो बताए हैं मुधा प्रसन्न चित्त रहते हैं और आत्म प्रसीदनम और आत्मा तृप्त रहता है। तो ये ऐसा अनुभव की हमें अपेक्षा करना है भक्ति में, ऐसे आनंद का अपेक्षा करना है। और दूसरे दूसरे हम जब अपेक्षा करते हैं तो हमें अपने आप को हम झूठा आश्वासन दे रहे कि हमारा शरीर सुख रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, कुछ पीड़ा नहीं आएगा, ये तो भ्रम है, आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमें भक्ति जब कर रहे हैं तो हमें इसका लक्ष्य हमें मालूम होगा। जैसे कल हम बता रहे थे कि एक आदमी था, बहुत दरिद्र में उनका ऐसा जीवन चल रहा, और उस दारिद्र में उनका शादी भी हो गया, ऐसे भी शादी हो जाता है, जिसके पास पैसा रहता है कभी कभी उनका शादी नहीं होता, सब कुछ रहता है शादी नहीं होता, और कुछ ऐसे लोग होते हैं दरिद्र में भी शादी हो जाता है उनका, तो इनका शादी हो गया, एक साल दो साल तीन साल बच्चे नहीं हो रहे थे। और एक बार ऐसा हो गया कि एक रोड एक्सीडेंट में वो गिर गया और उनके आंख चले गए, अंधा हो गया, क्या कष्ट देखा। पहले तो वो दारिद्र्य में था, उसके बाद शादी हो गया, बच्चे नहीं हो रहे हैं और एक्सीडेंट होके आंख भी चली गई। तो इस हालत में एक साधु संत से मिलना हुआ, तो बोले आप अच्छा भक्ति करो, आपको ये सब दुख चले जाएगा। ऐसा नहीं बताया, आपको भगवान बुद्धि देंगे। तो वो भक्त नहीं था, लेकिन एक मतलब उनका श्रद्धा था थोड़ा बहुत। तो एक देवता, वो भक्ति देखने से एक देवता आ गया, वो पूछा आप जो साधना कर रहे हैं उससे हम प्रसन्न हैं, लेकिन हम तो देवादेव भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है, एक सामान्य देवता है। तो आपको कुछ बहुत ही चीज हम देख सकते हैं, आपको हम भक्ति नहीं दे पाएंगे लेकिन भौतिक चीज दे पाएंगे आप, लेकिन एक ही इच्छा आपको प्रकट करना है, एक ही इच्छा आप प्रस्तुत करना है, एक ही इच्छा हम पूरा कर सकते हैं। तो इनका क्या समस्या था, तीन समस्या, एक तो दारिद्र था, एक तो बच्चे नहीं हो रहे थे, तीसरा क्या था, वो अंधा हो। अब तीनों में से क्या पूछना, आप रहे तो क्या पूछेंगे, आंक। तो इसलिए जब भक्ति करते हैं तो बुद्धि हमें मिलता है। सो उसने पूछा, मेरा का एक इच्छा है कि मैं मेरे भवन के तीसरे मंजिल से मेरे बेटा को देखो, समझ गया, मेरे तीसरा मंजिल से मेरे बेटा को मैं देखो नीचे, एक ही इच्छा है। तो इसमें क्या हो गया, तीसरा मंजिल रहना मतलब बड़ा बिल्डिंग है ना, उनका दारिद्र चले गया, वो धनवान हो गया, और बेटे को देखना है तो आंख आ गया, और बच्चे नहीं थे तो बच्चे रहे तो देख सकता है, तो बच्चे भी हो, एक ही इच्छा, तीन हो गए। सो ऐसा बुद्धि मिलता है जब भक्ति हम करते हैं, भगवान ऐसा बुद्धि देते हैं कि हमारे जो भी पीड़ा है ऐसा एक छुटके में बस सब उसका समाधान मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बाद में नहीं आएगा, ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा बुद्धि हम चतुरता मिलता है भक्ति जब भक्ति करते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ रहते हैं। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, जो हम इंद्रिय को वश में रखने का कोशिश करते हैं भक्ति करते हुए, तो ऐसे साधक को क्या होता है, परमात्मा से प्रेरणा मिलता है, परमात्मा से हमको बुद्धि मिलता है। सर्वस्य चाहम खुद सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम पोहम, स्मृति मिलता है हमें, क्या पूछना है, हम क्या करना है, ऐसा बुद्धि भगवान देते हैं। क्योंकि जीवन में हर समय हमें कुछ जीवन के संघर्ष में कुछ निर्णय लेना पड़ता है, क्या नौकरी करें, किससे शादी करें, या कैसा पैसा कमाएं। भक्ति करते हुए इसको भी सोचना पड़ता है, गृहस्थ जो रहते हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन जब भक्ति करते हैं अच्छे भावना से, विनम्र भावना से जब हम भक्ति करते हैं और गुरु का जो आदेश है पालन करते हैं और अपना धर्म समझते हैं, शारीरिक धर्म भी होता है, वर्णाश्रम धर्म, हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, शूद्र है, स्त्री है, शादीशुदा है, नहीं तो शादी नहीं हुआ है, ये सब का एक व्यवहार कैसे करना है उसके प्रति एक नियम कानून। तो जिस उसको हम अपनाते हुए और हम भक्ति कार्य में लग्न जब रहते हैं तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं, ये भौतिक चीज को हम कैसे ज्यादा उसके ऊपर ध्यान ना देते हुए उससे हमें कैसे छुटकारा पाए। और क्यों छुटकारा पाना, क्योंकि भक्ति हमें करना चाहिए, हम ये भौतिक पीड़ाएं हमें भक्ति के रुकावट नहीं करना, इस कारण। ऐसा नहीं कि भक्ति के और समस्या से, पीड़ा से छुटकारा पाए और भौतिक मजा उठाने लगे। ऐसा नहीं है सर। जब हमारा लक्ष्य रहता है कि हम भक्ति हमें ऐसा करते रहना है, तो इस लक्ष्य से आप जब करते हैं तो ये भौतिक पीड़ाएं बहुत आसानी से हम उससे विमुक्त हो सकते हैं। और रहे तो भी हमें आतंक नहीं होता है भक्ति करने। इसलिए ये जो भक्ति है, हमें ये समझना चाहिए कि जरूर हमें आत्म प्रसीदनम, हमें आनंद देगा, असली आनंद। ये भक्ति कार्य हमें असली आनंद देगा, इस बात पे ऊपर हमें पूरा विश्वास रहना। और जब श्रद्धा नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, अश्रद्ध दान पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, अश्रद्धा श्रद्धा नहीं है, ज्यादा देर हमें ये धर्म का पालन नहीं कर पाता। छोटा समस्या आ गया, धर्म पालन करना छोड़ देते, भक्ति करना छोड़ देते, क्योंकि श्रद्धा नहीं। पूरा हमारा गुस्सा ये भक्ति के ऊपर छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, भक्तों के संग में नहीं आते हैं, क्योंकि हमारा अहंकार को छूट पहुंचा है। तो ये क्यों है? क्योंकि श्रद्धा नहीं। तो ऐसे लोगों का क्या हालत है? अश्रद्धा दान पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते, भगवान को प्राप्त ना होते हुए और फिर से ये दुखालय में आना पड़ता है, ये फिर जन्म मृत्यु के जो चक्कर में है फिर आना पड़ता है। तो इसलिए हमें पहले तो आनंद से भक्ति करना है, क्योंकि ये भक्ति ही हमारा एक साधन है, जो हम ये समस्या से सब मुक्ति पाते हुए हमें सही असली शाश्वत आनंद मिल सकता है। लेकिन माया ऐसा है, माया शक्ति ऐसा है, हम हर बार ऐसा सोचने की प्रयत्न करते हैं और पालन का प्रयत्न करते हैं, पालन करने का, फिर वो हमें भ्रमित करता है, नहीं 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 वो तो होगा या ना होगा, लेकिन इसको देखो, उसका थोड़ा मजा चुकसा होता है, इसमें भी मजा है थोड़ा, कभी आस्वादन करो। ऐसा माया हमें बहुत सारे चीज देता रहता है, तो हमें उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। और भ्रमित हो गए भी कभी का कभी नहीं, बहुत बार हम हो जाते हैं, लेकिन फिर हम आंख खोलना चाहिए और देखना चाहिए हमें माया भ्रमित कर रहा है और मैं उस भ्रम में पड़ गया हूँ, और ये भ्रम हमें नाश करेगा, तो हमें तुरंत भक्ति कार्यों का, साधु संतों का फिर हमें इसका आश्रय लेना है और भक्ति में फिर से जुड़ जाना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, अब बस हो गया, अब मैं तो भौतिक चीज में पड़ गया हूँ, अब भक्ति करने से क्या फायदा? नहीं नहीं नहीं, हर समय कुछ भी हो जाए फिर से तुरंत हमें भक्ति में लग जाना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्षिप्रम ही धर्मा, क्षिप्रम भवति धर्मा, बहुत जल्दी हम फिर लग जा फिर भक्ति में आ सकते हैं जब वैष्णव का आश्रय लेते हैं। तो इसलिए इस बात पे हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हम भक्ति एकमात्र साधन है हमें परमानंद देने का। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? शारीरिक कुछ तो नरेश प्रभु का प्रश्न है कि ये तो भीष्मदेव प्रभुपाद को संभव है, हमारे जैसे लोग जो भक्ति में उतना प्रगति नहीं किए हैं तो हमारे छोटा छोटा भी थोड़ा दुख आ जाता है, शरीर को रोग आ जाता है, तो भक्ति कर नहीं पाते हैं, पूरी तरह नहीं कर पाते। तो हमें वो हो सकता है, लेकिन हमारा प्रेरणा रहना है कि हमारा ऐसा ये चीज़ हमें रुकावट नहीं देंगे। हमको हम रोग हम पे ऊपर प्रभावित है, लेकिन भक्ति इतना शक्तिशाली है कि हमें इनसे इन सभी जो चीज़ है दुख या रोग कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन हम प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि भक्ति हमारा बहुत शक्ति ही नहीं, मतलब इतना प्रगाढ़ भक्ति नहीं है। तो एक बात यह है कि हमारा भक्ति के प्रति इतना विश्वास किसना है। हालांकि हम प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए हम भक्ति ठीक से नहीं कर रहे इसलिए ये प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में शक्ति कम नहीं है, भक्ति के इतना शक्ति है, लेकिन हम में इतना भक्ति नहीं कर पा, समझ रहे हैं बात। तो हम प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के शक्ति को हमें कभी उसका कमी नहीं महसूस होना चाहिए। हम भक्ति कम कर इसलिए हम प्रभावित हैं। जैसा कोई शक्तिवान है और हमको वचन दिए हैं कि हम आपको रक्षा करेंगे, लेकिन हमें हमारा बात सुनना है, लेकिन हम उनका बात नहीं सुने तो रक्षा नहीं मिले, किसका किसका गलती है? वो जो रक्षा देने वाला है उसने बताया हम रक्षा देंगे, लेकिन हम उनका बात नहीं माने। तो वैसे भक्ति भी हमें पूरा रक्षा दे सकती है। जो भी चीज है, इस श्लोक को हमें याद करना चाहिए, भक्ति स्थिरतरा भगवन यदि स्यात् दैवेन फलित दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलतांजल सेवतस्मान धर्मार्थ कामगतया समय प्रतीक्षा। जब हम भक्ति करते हैं और भक्ति का इतना हम प्रगति करते हैं कि मुक्ति स्वयं हमारे घर के बाहर खड़े होके बोलते हैं आपका सेवक अब करूँगा, मुकुलतांजलि हाथ ऐसे जोड़ के बोलती है, और उनके पीछे जो है धर्मार्थ धर्म अर्थ पैसा धन दौलत सब पीछे पड़ के रहते हैं, आपका सबका सेवा कब करूँ, सबका सेवा कब करूँ। यह हमें समझना कि हम वो धन के प्रति भागने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पीछे भागती है, आपका सेवा करना आपका सेवा, भक्ति में इतना शक्ति। लेकिन हमको ऐसा नहीं लग रहा है क्योंकि भक्ति नहीं कर रहे भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। सही भक्ति हो जाए तो ये श्लोक जो बता रहे हैं वो संभव हो सकता है, लेकिन हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं इसलिए पूरी तरह फिर भी हमें अनुभव हो जाता है कि थोड़ा भी भक्ति करें नेहाभिक्रम नाशस्ति प्रत्यवायो विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य प्रायतो महतो भयात्। थोड़ा भी भक्ति करते हैं हमें ये साक्षात हो जाता है कि हम बड़े बड़े विपत्तियों से हम छुटकारा पा सकते हैं, ये बहुत भक्तों का अनुभव है। कोई भक्त प्रभुपाद का शिष्य बन गया, भक्ति कर रहा है, लेकिन के पहले आने से पहले वो जो नशीली पदार्थ है उसका मतलब वो बेचना लेना काम करता था। तो वो भक्त होने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन हो गया और उनको जेल जाने का ऐसा गवर्नमेंट ने पुलिस ने दे दिया। तो प्रभुपाद ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, आप जल्दी आ जाओ। तो उसने जेल चले गया, तो वहाँ वो कुछ खाता नहीं था क्योंकि हर चीज़ में वो खाने लायक नहीं था, तो और वो फल फूल कुछ पल आते थे, तो उसका फिर इनका जो इनका जो चाल चलन था, तो उसको देख के जज ने फिर इसका केस स्टडी किया। उसने पूछा, आप आश्रम में क्या करते हो? हम बोलते हैं सुबह सुबह उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप करते हैं, हम ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं। तो जज ने सुना, इससे सजा और क्या हो सकता है, लग रहा है हम कि आपको जेल में जो सजा मिल रहा है बहुत कम है, आप आश्रम में रहकर और ज़्यादा सजा भुगत रहे हैं, तो आप जेल में रहने का कुछ ज़रूरत नहीं है, आप चले जाओ, तो जेल से छुटकारा होगा। तो हमें कभी कभी ऐसा एहसास हो सकता है, कभी कभी नहीं हो सकता। हमारे जीवन में क्या हो रहा है, कभी हम देखा अनदेखी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, भक्ति करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।